लक्ष्मी जी ने तुरंत पूजा की, उनके शरीर पर छतन तथा पुष्प चढ़ाया, उन्होंने मल्लिका फूलों की माला पहनाई और स्तुति की। उसका प्यार सदा है प्रभु तार पूजा पाया हाथी से लगिला,
प्रभु तार पूजा पाया हाथी से लगिला,
लोग बड़ी तार भाव अंगीकार कैला,
लोग बड़ी तार भाव अंगीकार कैला,
प्रभु तार पूजा पाया हाथी से लगिला,
प्रभु तार पूजा पाया हाथी से लगिला,
लोग बड़ी तार भाव अंगीकार कैला,
लोग बड़ी तार भाव अंगीकार कैला,
प्रभु तार पूजा पाया हाथी से लगिला,
प्रभु तार पूजा पाया हाथी से लगिला,
लोग बड़ी तार भाव अंगीकार कैला,
लोग बड़ी तार भाव अंगीकार कैला, प्रभु तार पूजा पाया हाथी से लगिला,
कृष्ण ने यह श्लोक पढ़ा था। तो गुरु की पत्नी तैयार रहता है बड़े बड़े अनुष्ठान करने के लिए शुद्ध हो गए। तो इस प्रकार से वो तैयार करती थी और रोज अलग अलग प्रकार की चीजों को लाकर कहते निधि को अर्पित करना, सामग्री अर्पित करना, पूजा की सामग्री अर्पित करना ऐसा करती थी। और एक मंत्र बोलती थी, उस मंत्र से पता चलता है कि उनकी इच्छा क्या थी, क्योंकि भगवान के पास जाते हैं तो हम सब अपनी प्रार्थनाएं बोलते हैं, तो जो प्रार्थनाएं हमारी है वही प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं या जो मन की इच्छाएं होती हैं भगवान, है ना। बार बार पता नहीं चलता कि हम भगवान के पास खड़े होकर वो व्यक्ति या एक वैष्णव या कोई भक्त क्या बोल रहा है, लेकिन भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, भगवान के मन से प्रार्थना को पूरा करते हैं। तो क्या करती थी, क्या आएंगी महामारी योगी महायोगिनी हरीश्वरी नंदभोग सुतम देवी पति में कृत्य रमा, क्या बोलती थी, एक क्या करी देवी आप महामाया हैं, महायोगिनी हैं, आप हरीश्वरी हैं, आप महाराज नंद के पुत्र को मेरा पति बना दू, मैं आपका नमस्कार कर रहा। तो ये यात्रा करके नहीं है, अगर कोई बोलेगी कार्य की पूजा कर रही है लक्ष्मी प्रिया की पूजा करी देवी देवताओं का, तो ये देखने में लगता है कि अगर हम भी कर सकते हैं क्या भक्त कर रहे थे। तो यहाँ पर सब किया गया है नंद को सुतम देवी पति में कृत्य रमा, यानी जो नंद के जो पुत्र हैं उनको पति बनाना चाहता है इसलिए पूजा करनी चाहती है। ऐसा करते करके रोज मंत्र बोलती थी, रोज नियम था। ऐसा करते करते क्या हुआ, पूरे महीने व्रत करते हुए अंतिम में एक महीना समाप्त हो जाता, और जब अंतिम दिन था यानी महीने का अंतिम दिन था, तो जो जो से गायन करती थी एक दूसरे स्नान करती थी, वस्त्र को उतार कर वो जल में प्रवेश करके स्नान करने लगे। तो भगवान के जितने जोर से पुकारा जा रहा है भगवान को, भगवान आएंगे है ना, एक महीने से पुकारा जाएगा अपने व्रत करके बड़ी निष्ठा से और इच्छा से शुद्ध इच्छा से, तो भगवान आते हैं। तो भगवान आए, भगवान आने क्या करते हैं, और साथ रास्ते को चलते हैं फ्रेंड को भी ले जा रहे थे दो चार विश्वनाथ चार रास्ते उनको लेकर आए, दो चार लोगों के साथ किया कि आए और उसके कपड़े को उठाया और कदम को वृक्ष को चढ़ कर और उसको बांध दिया हमारे कपड़ों को। तो बताते हैं कि इस समय विश्वनाथ ठाकुर यहाँ ताजा में लिखते हैं कि बताया गया इस प्रकार वो जो बच्चे के साथ जो फ्रेंड थे वो उनकी प्रति दो तीन वर्ष की ज्यादा वर्ष थे छोटी थी, तो सदा से वहां चढ़ गए और चढ़कर उन्होंने क्या किया, उनको बोलना शुरू किया गोपियों को। तो बहुत अच्छा वर्णन किया गया विश्वनाथ जी ठाकुर के द्वारा और एक बहुत ही रोचक है। तो इसमें नौवें श्लोक से इसका वर्णन किया गया है और बोलते हैं बोलते तो ब्रज की गोपियों, तुम्हें पता है ये किस तरह का कपड़ा है लटका हुआ है, लागे बोलती है तो पता कि किस तरह कपड़ा लटका हुआ है, उसे पूछ रहे गोपियों कृष्ण बोलते ये कदम जो वृक्ष पर टंगा हुआ था मैं दूर से देखा गाय पर चढ़ाता और जा रहा था, दूर से मैंने कपड़े देखा, मैंने सोचा कदम के वृक्ष में ये विभिन्न प्रकार के फूल और पत्तियां कहां से आ गई, तो मैं ये जानकारी लेने के लिए चढ़ गया। चढ़ने का वस्त्र है कि वस्त्र जिसके आपको पता है ऐसा उनसे पूछते हैं, तो गोपियां बोलती हैं कि वो हमारे कपड़े हैं, बोलते नहीं नहीं ये आपके कपड़े कैसे हो सकते हैं, हमारे कपड़े होते तो इतने उम्र पर कैसे बंधे होते, तो बोलती हैं कि नहीं नहीं हमने तुमने वहां चोरी करके टांग दिया, तो बोलती है हम तो पीछे रखकर गए थे तुमने वहां टांग दिया, तो बोलती तुम उसका ब्रेक करके चोर बोलते तुम नहीं जानते थे गदन का पुत्र हूं, अगर इतने ही तुमको लगता है ज्यादा कंप्लेन कर देते हैं, दूसरा बन गई ध्यान से देखिए ये पुरुषों के कपड़े नहीं है ये स्त्रियों के कपड़े ना, बोले हाँ स्त्रियों के कपड़े हैं, तो क्या हुआ मुझे पता है कि स्त्रियों के कपड़े कितने होते हैं, स्त्रियों के कपड़े दस बजे के होते हैं मुझे पता है और ये स्त्रियों के ही कपड़े हैं, बोलते ठीक है अगर स्त्रियों के कपड़े हैं तो हमारे होंगे ना, हम यहाँ पर हैं और स्त्रियों के कपड़े हैं, बोलते वो ठीक है किसी और के कपड़े हो सकते हैं किसी और स्त्री के हो सकते हैं, बोलते नहीं कैसे स्त्री हो सकते हैं पूरे संसार में हमें बिना जंगल में कोई स्त्रियाँ दिख रही हैं आखिर स्त्री कोई दिख रही है हमें तो है, बोलते तुम्हारे अलावा क्या कोई स्त्रियाँ अकेले घूमती नहीं है क्या और घूमती हैं स्त्रियाँ, बोलते लेकिन इस जंगल में तो कोई नहीं है इस जंगल में कौन आया होगा, बोलते ठीक है मान लीजिए जंगल में कोई नहीं आएगा मुझे लगता है हम सुनाए हैं कि यहाँ पर आपको स्नान करने के लिए वो कपड़े को सुखा दिया, बोलते हैं अच्छा कपड़े को सुखा लिए तो वो क्यों छोड़ के जाएंगे अपने कपड़े, अगर उस दान कर लिए अपने कपड़े छोड़ के क्यों जाएंगे। बोले इसलिए छुपा के सुखाए सुखने के छोड़ दिया है, आ जाएंगे दान करेंगे और ये कपड़े पहनेंगे और दूसरा सुखा के जाएंगे। बड़ा दिमाग लगा रहा है। इस प्रकार का जो वार्तालाप से पिछड़ा है तो हम जब पढ़ते हैं भागवत को तब से देख सकता है कि ये सब जो लिखा हुआ नहीं है हमारा भागवत में, तो विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर क्यों लिख रहे हैं स्वामी। विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर जो है वहां आचार्य हैं और वो उन लीलाओं का प्रवेश कर जाते हैं और वहां जाकर उनके वार्तालाप को सुनते हैं और उसको लिख सकते हैं, है ना। इसलिए हम जब उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको लिखा नहीं, लेकिन ये है। ऐसे भगवदगीता में भी, भगवदगीता में भगवान एक प्रश्न पूछने पर उत्तर दिए जा रहे हैं, एक बातें नहीं बताई जा रही, नहीं नहीं पता। तो देखिए लगता है कि प्रश्न को पूछा नहीं है फिर बताया जा रहा है, लेकिन वहां पर अर्जुन ने पूछा होगा और उस रूप में विश्वनाथ भगवती टीका में लिखते हैं कि कैसे अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे दिया है, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दिया है। क्योंकि हम बाहरी दृष्टि से देखते हैं समझ नहीं पाते, लेकिन आचार्य बताते हैं पूरा लीला का दर्शन होता है। जैसे कि जो वर्णन किया गया है ऐसा लग रहा है कि भगवान बैठे हुए हैं और जो वस्त्र उसको चुरा कर बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो जब फिर लोग होते हैं कि अगर तुमको कुछ चाहिए कपड़े तो ये एक एक करके यहाँ पर आओ और इससे मजाक मत करो, मैं मुझे मजाक करके पसंद नहीं हूँ, मैं बहुत ही सिंपल हूँ व्यक्ति हूँ, तो अगर कपड़े चाहिए तो मैं साथ ले आऊँ। तो बोलते हैं कि हम तो नहीं आएंगे वहाँ पर, बोलते हैं हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। तो बोलते हैं कि देखो मैं जो बोलता बड़ा स्ट्रॉन्ग मारता हूँ, मतलब एक बार बोल दिया तो बोल दिया, कपड़े लेना है तो आना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं कि हम मुझसे डरते हैं क्या, हमें तुम्हारे पर बात का विश्वास नहीं है, अगर तुम आने दो तो नहीं मन पर क्या करोगे। बोलते देखिए मैं सच बोलता हूँ, मैं पर कुछ नहीं करूँगा और मैं इस पर शपथ ले लेता हूँ, शपथ से अलग नहीं होता हूँ, मैं बहुत ही देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सारे धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं तुम पर मर्ति कृपा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए तुम्हारे कपड़े वापस कर रहा हूँ, अगर लेना है तो वापस आ जाओ। ऐसा बोलते हैं, बोलते नहीं कि तुम झूठे हो, कई बार पहले तुमने झूठ बोला है, अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो, हम तुम पर विश्वास नहीं करते, तुम्हारी जो प्रॉमिस है या तुम्हारे जो शपथ है उस पर विश्वास नहीं करते। तो बोलते ठीक है अगर तुझे लेना है तो लो, तो ठंडे पानी भूलते रहो, ठंडे पानी तुम्हारी तबियत खराब आ गई, ठीक है। और ये जो व्रत कर रहे हैं ठंडे ही व्रत कब किए जाते हैं, ठंड के समय में किए जाते हैं, मार्गशीर्ष के महीने में किए जाते हैं, उसका बहुत ठंड होता है। तो बोले लगे कि ठीक है तो मैं आपको कपड़े पकड़ भेज दो, ऐसे करके कपड़े भेज दो, श्री श्री राधा शांता जी जी श्री सीताराम जी। तो गोपियां बोलती है ठीक है अगर आपको ऐसा है कि एक तरीका और है उधर बीच का रास्ता निकालना भी कि हम आने व्यक्ति तुम देना नहीं चाहते हो तो काम करो कपड़े भेज दो ऊपर से हम उसको ले लेंगे। तो बोलते देखिए मैं बहुत विनियम करता हूँ, मैं किसी के कपड़े को छूता नहीं, यहाँ तक कि नामुक से भी स्पर्श नहीं करता हूँ, तो मैं कैसे आप लोग कपड़े छूंगा, मैं कपड़े नहीं छू सकता, इसलिए अगर तुमको चाहिए तो कपड़े आने पड़ेंगे। वो तो अगर हम लोग कपड़े लेने आए तो क्या होता आलिंगन कर लो हमारा, तुम बहुत बदवा उसको बताया। बोलते देखिए मैं बिल्कुल वैसा करने वाला नहीं हूँ, एक व्यक्ति आए हाथ में से और आए अगर मैं उसका आलिंगन करूँ तो पति बताना, अगर वो व्यक्ति को छोड़ दिया ठीक है बाकी सवाल है आपका मुझे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो बहुत दुआ मेरा से बातें बोलने लगते हैं। तो आगे बताते हैं सुंदर चतुर्थ ठाकुर बोलते हैं कि जो बहुत सारे लोग हो तो बहुत सारे कपड़े भी हैं, तो कपड़ों को लेने के लिए कोई एक व्यक्ति अगर आता भी है मान लीजिए तो हो सकता है वो दूसरे कपड़े ले जाए, है ना, अच्छे कपड़े लगे पसंद आए तो कपड़े ले जा सकता है। इसलिए क्या करो एक साथ या तो एक साथ आओ या कि एक ही कपड़े अपना पहचान बता के कि मेरा कपड़ा है, अगर मुझे कोई अनाउंस कर देते ना इसका मोबाइल नंबर है पहचान बना के ले जाए वैसे ही पहचान बता के ले जाओ। तो वैसे ही बोलते हैं कि चुपचाप अपने कपड़े लेने हैं तो आ जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं अगर कपड़े नहीं लेके जाते हो तो मैं क्या करूँगा कपड़ों का झूला बना लूँगा, और क्या करूँगा तकिया बना लूँगा झूला बना लूँगा, आराम से बैठ कर मैं क्या करूँगा उसका झूला चुनूंगा। तो अगर लेना है तो मैं बताता हूँ। बोलते हैं कृष्ण, अरे पक्षी से कन्याओं, अरे तो क्या नहीं आऊंगी, तो इस शाखाओं पर टंगे वस्त्रों से झूला बनाऊंगा, उस पर लेट जाऊंगा, क्योंकि मैं रात तक जगा हूं और मुझे नींद आ रही। तो ये जब वो भी होती है, अरे हमारे प्यारे वाले, तुम्हारे कौड़ी घास की लालच में गुफा में चली गई है, तुम जाकर तुम उसी तरह से नहीं लेकर आते, यहाँ कहाँ पर टंगे कर। तो ऐसा करके वो उसी को भटका गई। कृष्ण बोलते, अरे गोपियो अब तो आ जाओ, तुम्हें जल्दी यहाँ सफर जाता है, घर पर काम 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 से करना है, ठीक है, क्यों अपने माता पिता का अंदर गुरुजनों की शिद्दत बन रही हो, तो लेट हो रहे हो, उनकी चिंता हो रही होगी, तो जल्दी आओ। वो भी बोले हे कृष्ण, हम पूरे बार तक यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सरकारी व्रत अपने माता पिता का गुरुजनों के महीने पर कर रही है। तो बोलते सारी प्यारी तपस्वी हो, तुम्हें देखकर मेरे मन का घर जीवन से बड़ा पसंद हो गया। हम घर बोल रहे हैं घर एक गहरा मिला, आप जाने का मन नहीं करना है, मैं यहाँ पर एक बात उनका पादों में रहने का व्रत पूरा करूंगा, नहीं रहूंगा, बढ़िया व्रत करूंगा। यदि तुम लोग मुझ पर दया रखा कर दो तो मैं चिंता कर तुमको मेरे साथ उत्पाद पूरा कर सकता हूँ, तुम भी कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, इसलिए तो वास्तव में उनको आनंद आ रहा था, गोपियों को है ना, उनको तो अच्छा लग रहा था, यही चाहते थे, यही प्रार्थना करें थी बार बार उनके पति बन जाए। तो पति जैसे पति पत्नी से मजाक करते हैं, उस प्रकार से मजाक व्यवहार के बीच में तो उनको आनंद आ रहा है, लेकिन बात लज्जा बनती है, लज्जा भी है, तो लज्जा के कारण बच्चे बोल रही है कि बोलती है कृष्ण अन्याय मत बनो, हम जानते हैं कि तुम धन के मानवीय पुत्र हो, व्रत का हर व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करता है, तो किसी व्यक्ति से कुछ लेना होगा तो व्यक्ति उसका थोड़ा तारीफ करना होगा, है ना, जैसे किसी व्यक्ति से छाटा करके बोलते हैं और कुछ मंगवाना हो तो भोजन के लिए बुलाइए, अब खूब खिलाइए, खाते तो बोलिए, और एक छोटा सा काम था, हाँ वैसे चिंता की बात क्या, आप आदेश दीजिए। तो वैसे ही सम्मान करके वो बोल रही हैं, हमें भी तुम अत्यंत प्रिय हो, कृपा करके हमारे मन पर लौटा दो, हम ठंडे जल में नाच रहे हैं, गोपियों ने कहा। तो ये श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं और तुम गोदी कहो कि हम करेंगे, कि तुम हमारे वर्ष हमें लौटा दो, तुम धार्मिक क्यों की ज्ञाता हो, और तुम यदि हमारे वर्ष को नहीं दोगे तो हम राजा से कह देंगे, मान लो। तो थोड़ा बहुत बोलती भी है, तो भगवान बोलते हैं यदि तुम सत्य मेरी दासियां हो और मैं जो कहता हूं तो वास्तव में करोगी, फिर अपने अबोध भाव से मुस्कान करके यहां आओ, अपने बच्चों को भगवान अपनी चीजों पर खड़े हुए हैं, भगवान फिक्स है। देखिए ये जो प्रसंग है, देखने में बाहरी दृष्टि से हमें लग रहा है कि भगवान की ऐसी लीलाएं हैं, तुरंत लीलाएं हैं, देखने में लगता है, लेकिन सब से हमें शिक्षा मिलती है, जो भगवान सब बातें बोल रहे हैं, जो भगवान का स्वभाव है, भाव प्रकट कर रहे हैं, ये सब हमारे से प्रकट कर रहे हैं, और जो गोपियां प्रकट कर रही है वो सब हम प्रकट कर रहे हैं भाव, है ना। तो यहाँ पर बात बोल रहे हैं यदि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पास को वापस नहीं दूंगा, यदि तुम राजा यदि राजा नाराजगी हो जाए तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, कल से वर्ण कर कल से बिगड़ जाएगा। तो गुरुवार जो बोलते हैं जब गोपी ने देखा कृष्ण दृढ़ और अटल बने हुए हैं, उनके पास आज्ञा पड़ा था, लेकिन बार बार कोई चारा नहीं था, तो क्या करती काफी काफी वो क्या करी, अपने कपड़े लेने के पास पहुंची, तो भगवान उनकी शुद्ध भाव से प्रकट हो गए कि अपनी इज्जत उनके इज्जत के बारे में कुछ नहीं सोचती गोपी है, वो क्या सोच रही है कृष्ण की इच्छा को पूरा करना है, कृष्ण बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो वस्त्र लेने के उनके पास पहुंच गए, और जब उन्होंने देखा कि पति के रूप में वो इच्छा पूरी भी हो रही है और कृष्ण प्रसन्न भी है, तो उन्होंने क्या किया उनके पास पहुंच गई, और कृष्ण ने कहा तुम कबों ने अपना व्रत रखे न तो कुछ स्नान किया है, जो कि देवताओं के प्रति अपराध है, भगवान छोड़ भी गए कपड़े देवी लिए पहन तो ठीक है लेकिन छोड़ भी नहीं रहे, अतः अपने आप पाप निराकरण के लिए तुम सब लोग क्या करो, अपने वस्त्र पहनने के बाद वरुण देव सब प्रणाम करो, तुमने जल के प्रति अनादर किया है, जन्म स्नान किया है, इसलिए तुम्हें नमस्कार करके उन्हें क्षमा मांगना चाहिए। तो क्या करती है वो सीधी साधी है, गोपाल जी बोलते हैं कृष्ण के रूप में कि जो कृष्ण बोलते हैं वो सब मानते हैं, ये उनकी सरेंडर है ना, एक बताते हैं कि एक भावना जो एक भक्त के अंदर सबसे ज्यादा आवश्यक है वो है सरेंडर। तो वो गोपियों के अंदर स्वाभाविक रूप से देखा जाता था, तो वो वरुण के कोष से अपने आप को बचाने तथा व्रत वृद्धि के लिए अंत को अपने आराध्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने आत्म के आदेश का पालन किया, ठीक है। इस प्रकार वे कृष्ण को सर्वोच्च प्रमेकाएं तथा परम आचार्य देवताएं बन चुकी है। तो भगवान जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कृष्ण में गोपियों को कृष्ण भावना अद्वितीय है। वास्तव में गोपियां तो ना तो वरुण देवता की ना किसी अन्य देवता की प्रभाव थी, तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। तो ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है इस लीला से। तो भगवान जी यहां पर तात्पर्य ये बात बता रहे हैं जिस प्रकार भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए लीला कर रहे हैं, ठीक है, और गोपियां भी उनसे प्रसन्न हो रही है। तो भक्तों के बीच में ये देखा गया है, भक्त भगवान के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में क्या है, भक्त अपनी प्रार्थनाएं बोलते हैं और भगवान उनकी पूर्ति करते हैं। तो एक बार स्वागत स्वयं मना बता रहे थे, इसलिए भौतिक इच्छाएं हो चाहे आध्यात्मिक या भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा है, वो प्रार्थनाएं भगवान से बोलनी चाहिए और किसी से नहीं, देवताओं के पास नहीं आना चाहिए। क्योंकि सोचिए कि कोई व्यक्ति कोई पुत्र है अपने पिता को छोड़कर पड़ोसी के पास जाता है और पड़ोसी से बोलता है कि मुझे भोजन चाहिए खाने के लिए या पैसा चाहिए कुछ खाने के लिए, तो पिताजी को कैसे लगेगा? पिताजी के लगे तो मुझसे मानना होता, मेरा बेटा होता है पड़ोसी से जाकर मानना। तो इसी प्रकार अगर कभी भौतिक इच्छाएं आती भी है भक्तों के बीच में तो हमें भगवान से माननी चाहिए। हालांकि छोटा जी बोलते हैं शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है, लेकिन अगर मांगना ही है भगवान से मांगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इस लीला की शिक्षा क्या मिलती है, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि भगवान हमारी आंतरिक इच्छाओं को देखते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी इच्छाओं को पूरा होने में विलंब हो जाता है, कि हमारी वास्तविक आंतरिक इच्छा क्या है, भगवान की भक्ति करना है। लेकिन इस कारण से हम लोग कुछ ना कुछ और डिमांड करते हैं, साथ में एडजस्ट करते हैं, उससे क्या होता है भगवान का कैसे डिले कर देते हैं हमारी भौतिक इच्छाओं में, है ना। एक इच्छा ये है तो ऐसा होता है कि भगवान आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आप कष्ट भी देते हैं। जैसे गोपियों गोपियों ने क्या किया, भगवान के पति के रूप में स्वीकार करना चाहा, भगवान ने क्या किया उनके वस्त्र चोरी कर लिए, वस्त्र चोरी करके काम किया और क्या बोले आओ लेने के लिए। तो उनके लिए इस तरीके की चर्चा हुई कार्य है। वैसे ही कभी कभी ऐसे भी आदेश मिलते हैं गुरुजनों से या भगवान के आदेश शिला प्रभुपाद जी जैसे आदेश मिलते हैं, जो आपको शास्त्रों मिलते हैं या भक्तों से मिलते हैं, जो हमारे लिए कठिन होते हैं, हमें दिक्कत पर किसूर करने में उसको लगता है कि कैसे पालन करें। लेकिन वही तरीका है गुरुजनों को या भक्तों को या कृष्ण को प्रसन्न करने का या प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का, कि किसी भी अवस्था में इसका पालन किया जाए, जैसा बोला जाए वैसा किया जाए, दिखने में कठिन लगता है और उसी से शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। और जैसे कि मान किया जाता है दवाई कड़वी होती है लेकिन ठीक वही करती है, हम क्या करते हैं दवाई को मन नहीं होता फिर भी लेते हैं। तो रूपा जी ने हमें अच्छे प्रोग्राम किए हैं, जो प्रोसेस दिया है भक्ति का, रूपा जी ने अपना बेस्ट प्रोसेस दिया है, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकते, किसी भी संस्था में कहीं भी चले गए। तो अगर हम उसको पालन नहीं करते हैं तो हम कभी भी प्योर नहीं होने वाले, हमें बीमारी की स्थिति नहीं होने वाली। जैसे कि डॉक्टर दवाई लेते हैं और बताते हैं तो नियम खाने का, वैसे हमें पूरा दवाई परफेक्ट मेडिसिन मिला हुआ है, पूरा प्रोसेस बताया गया है, अगर हम उसको लेंगे ठीक बनेंगे। जैसे गोपियों को बोलेंगे आ जाओ वस्त्र ले लो, वो कितना बहाना कर रहे थे, कितने बातें कर रहे थे, हम भी ऐसे लॉजिक देते रहते हैं कि नहीं नहीं एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली वो प्रॉब्लम है, मुझे ये होती दिक्कत इसलिए मैं बैठ के छट नहीं कर पाता, बाहर करता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं अस्वस्थ हूँ तो मैं मंगल आसन नहीं आ सकता। तो हम प्रोसेस को नहीं फॉलो करने के लिए इतने सारे एक्सक्यूजेस देते हैं बहुत सारे, और एक बहुत बड़ा चाल बन जाते हैं अपने आस पास, और क्या करते हैं कि हम भक्ति में फिर भी प्रगति करेंगे, इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद ने जो प्रोसेस दिया है उसको पालन करेंगे कभी बढ़ पाएंगे, और कोई प्रगति करेंगे कोई पालन नहीं सुनता है। इसलिए देखा जाता है चाहे बीमार हो आप या किसी कारणवश आपकी अवस्था ठीक नहीं है, मजबूरी है, उस सब अवस्था में जितना अधिक प्रयास करते हैं तो भगवान देखते हैं कि कितनी मुसीबत के अनुसार हम प्रयास कर रहा है भगवान उससे बचा रहा है। जैसे भगवान भगवदगीता में बोलते हैं सर धर्मान सत्य माम स्वाम सारा क्यों मुख्य शिष्या में मां सोच, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, सब मुझे सरेंडर करोगे। लेकिन उसके पहले क्या बोलते हैं भगवान, कदम पापा जनाना पुण्य करवाना, जिन्होंने अपने सारे पापों से कर लिया अंत कर लिया है वैसे दो पुण्य आत्माएं दृढ़ बुद्ध होकर मेरा मतलब कर सकते हैं। तो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन लगता है ना, एक तरफ बोल रहे हैं कि जो पाप बदम के लिए वो भजन करेंगे, दूसरी तरफ बोलते हैं मेरी भजन नहीं या मुझे सरेंडर कर दीजिए मैं दोबारा काम मत कर दूंगा। तो एक व्यक्ति है ये घट इस प्रकार से भगवान शिक्षा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो चल नहीं पाता है, बस रेंगता है जमीन पर, वो बल क्या देता है, बल क्या नहीं आता, तो कहीं भी बल क्या देता है, तो माता क्या बोलती है, नहीं नहीं आप अगली बार मेरे यहाँ पर मन नहीं करना, ये टॉयलेट है, ये वॉशरूम है, इसमें जाकर मन करना ठीक है। और अगर आपको आता है पॉटी फील होता भी है तो मुझे बोलना बताना, या फिर अंदर जाकर वॉशरूम में यूज करना, तो ऐसा मां को डांट दिया। तो ये है प्रयास करने के लिए सूक्ष्म, ठीक है। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, प्रयास करता है कि जब उसको प्रेशर आता है तो कोशिश करता है कि बच्चा है इसलिए वो क्षमता नहीं होती कि बुरा कार्य कर सके, सीख रहा है वो क्या करता है, कुछ दूर चलने के बाद बंद क्या करता है, जैसे बंद क्या करता है उसकी बात हो जाती है, क्या किया तुमने, फिर बंद क्या किया तुमने, तो उस समय क्या करता है वो बताता है कि माँ मैं असमर्थ हूं, मम्मा मैं नहीं कर पाऊंगा, हाथ उठा लेता है। तो उसकी माँ ने मुझे मिलकर चलते चलो मेरे बेटा मैं साफ कर देता, चिंता मत। तो भाई ये भगवान ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि पापों को नष्ट करके मेरा भजन करो, क्योंकि ऐसा नहीं बोलेंगे, सिर्फ यही बात बोलेंगे सर धंधा पर क्या करो, सभी धर्मों को क्या कर दे, श्रद्धा मैं तुम्हारे पाप नष्ट करूंगा। तो बोले ठीक है, हमें तो पाप से कुछ पाप से बचने की जरूरत नहीं है, तो सरेंडर हो, प्रयास नहीं करेंगे, तो भगवान प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो ये शिक्षा यहां से दे रहे हैं, इस प्रकार प्रार्थना तो करनी करते मिलते गोपियां, उनको मिलने भी वाला था, लेकिन भगवान क्या करते हैं, सरेंडर बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं, हमें मजबूर करते हैं, ऐसे मुसीबत पर डालते हैं ताकि हम लोग सरेंडर बढ़ाए। भगवान को बहुत प्रिय है श्रद्धा देवी, सरेंडर सबको प्रिय है। आप किसी व्यक्ति को सरेंडर करते हो तो अच्छा लगता है, आप किसी व्यक्ति के पास जाकर क्योंकि आप जो बोलेंगे हम करेंगे, आपके बिना हम कुछ और कार्य नहीं करेंगे, आप जैसा बोलेंगे वैसे करेंगे, तो अपने आप में व्यक्ति को अच्छा लगता है कि इसमें सरेंडर संभव है। तो व्यक्ति को अच्छा लग सकता है तो भगवान को अच्छा लगता है, तो इसीलिए शरणागति हमारे ज्यादा हम समझा रहे हैं। तो 26 जो गुण वैष्णव के बताए रहे हैं उसमें प्राथमिक है कुछ और कुछ क्या है गौण है, सेकेंडरी है। जो प्राइमरी क्वालिटी में से 26 में से एक क्वालिटी जो है प्राइमरी है, प्राथमिक और सेकेंडरी है, वो क्वालिटी क्या है, शरणागति सरेंडर। अगर हम सरेंडर कर देते हैं हर चीज में, हर चीज में एक ऐड कर देते हैं, हर एक्टिविटी में, हर कॉन्शियसनेस में, हर फीलिंग में शरणागति, तो बाकी तो क्वालिटी में ह्यूमिलिटी टॉलरेंस दक्षता सब अच्छे अंदर है, लेकिन ये शरणागति सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही करना है। तो यही बात बता रहे हैं कि शरणागति को भगवान पसंद करते हैं, गुरु जी को यही जाता है, इसलिए बार बार प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बोला जाता है। जैसे ही प्रोसेस के लिए या किसी व्यक्ति के इंस्ट्रक्शन के लिए, गुरु के लिए या भगवान के इंस्ट्रक्शन के लिए हम सरेंडर करते हैं, हमारे लिए सब कुछ कार्य धीरे धीरे सरल हो जाता है, सरेंडर से करते हैं। तो बताया जाता है कि कोई व्यक्ति क्यों नहीं प्रगति कर पा रहा है, जैसे कि हम सब पूछते हैं बोलते हम प्रगति कर रहे हैं, हम दुखी हैं, कभी बोलते हैं तो जी कुछ आनंद नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है, भक्ति में आनंद नहीं आने का कारण यही है कि हम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं, है ना। जो जितना प्रतिशत भक्ति कर रहा है उतना प्रतिशत वो आनंद है। जैसे बचपन में कलर सुनते थे सब जब सबसे कथन, एक बुढ़िया बचपन में मर गई, एक बुढ़िया बचपन कैसे मर सकती है, ना एक बुढ़िया बचपन से नहीं मर सकती, बुढ़िया होगी तो फिर बचपन कैसे मरेगा। वैसे एक कृष्ण भक्त उदास, कृष्ण भक्त उदास नहीं हो सकता, ठीक है, मैं भक्त और दुखी हूं, या तो भक्त है या दुखी है, दोनों अलग अलग, भक्त दुखी हो जाता है, दुखी होने का मतलब है कहीं हम लोग ठीक से भजन नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बोल सकता है जी चलो हम लोग जैसे कई बार भजन देखते बैठे हो गए, हमें बड़े दुखी बोलते हैं, हम बहुत दुखी हूँ भगवान अपने शरण में लेते, वो किस प्रकार का, वो एक प्रकार से जैसे भक्ति का प्रार्थना है, वो भगवान से भक्ति प्राप्त होने के दुखी है, ये संसार दुखी नहीं है, यहां से निकलने के लिए भगवान के पास आने के लिए दुखी है, वो यहां रहना नहीं चाहता, उसकी इच्छा है भगवान की भक्ति करना, उसलिए दुखी है। पर हम लोग अपने समस्याओं को दुखी, अपने अनर्थों से दुखी है, इसलिए बोला गया कि कृष्ण भक्त अगर दुखी है तो मतलब प्रोसेस को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है ना। हम लोग सुनते रहे इस बार मैंने मुंबई में सुना था कृष्ण का दास दास माया का दास तो माया का दास होता है उदास होते हैं कृष्ण का दास विदास होता है। विदास का मतलब चिंता नहीं होती, चिंता यही होती कि कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, बस एक ही चिंता होती है। ठीक है, और प्रभुपाद जी के लोग मेंशन करते हैं कि जिनको कृष्ण का पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान करके प्राप्त हो जाता है, तुरंत अपने आप को समर्पित कर देता है और विनम्रता से रहता है। और जब भी विनम्रता के साथ आ जाती है तो वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को जो गुरु के द्वारा कृष्ण के द्वारा प्रभुपाद जी के द्वारा मिला हुआ है उसका पालन करने में उसको कठिनाई नहीं होती। लेकिन किसी को बहुत ज्ञान हो गया है, बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है और विनम्रता नहीं है उसके अंदर, तो वैसे भी है जैसे कि कोई व्यक्ति ड्रामा करता है तो ड्रेस पहन लेता है, ड्रेस पहन कर ड्रामा करता है, लेकिन अंदर जो व्यक्ति कोई और है तो ड्रामा की व्यवस्था कर रहा है। तो वैसे अगर मुझे वास्तविक ज्ञान हो गया है तो विनम्रता बननी चाहिए, सरेंडर बननी चाहिए। तो वास्तविक ज्ञान भी यही है और ये वास्तविक ज्ञान जो होता है वो हृदय प्रकाश होता है। जैसे एक महाराज बोलते हैं ललित मधुर के गुरु महाराज जैन तो वो महाराज बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है, खोपड़ी तो प्रकाशित नहीं होता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है, सरेंडर करेंगे तो दिव्य ज्ञान अपने आप प्रकाशित होगा, दिव्य ज्ञान अपने आप प्रकाशित होगा तो सरेंडर ऑटोमेटिकली और बढ़ जाएगा। सरेंडर करने से सारी चीजें होती है। और एक कथा आती है मध्वाचार्य मतलब कथा, सर्वजन नाम का एक व्यक्ति था जो भविष्यवाणी करता था। तो एक व्यक्ति से मिलता है, उसको बोलता है कि आपके पिता जो है बहुत ही बड़ा धन आपके घर में किसी स्थान पर छुपा गए हैं और क्योंकि वो विदेश में ध्यान हो गया है इसलिए आप उसका बता नहीं पाए, पर मैं भविष्यवाणी करने की दृष्टि पता करके बता रहा हूं कि आपके घर में वो धन है। वो धन जो है पूर्व दिशा की ओर है, वो धन को खुदों को मिल रहा है, वहां धन गाड़ सरकार ने जवानों में धन को जमीन का गाड़ दिया जाता है घर के साथ। तो बोलते हैं लेकिन आप पश्चिम दिशा की ओर जाओगे तो वहां पर एक यक्ष है जो यक्ष बैठा हुआ है किसी धन की रक्षा करने के लिए, लेकिन वो बैठा हुआ था पश्चिम दिशा की ओर, वो आपको मार देगा। अगर आप दक्षिण दिशा की ओर जाओगे वह एक भयानक झेला पीछे बैठा हुआ है, वो आपको टन से मार देगा। और उत्तर दिशा की ओर जाओगे जाओगे वहां पर देखोगे कि एक छोटे सांप को बड़ा सांप खा रहा है, इसलिए सिर्फ उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाना। तो इस पर शास्त्र बताते हैं कि जो पक्षी दिशा की ओर यक्ष है वास्तव बताया जाए वो इस प्रकार का मनोधर्मियों के द्वारा जो व्यापक है मनोधर्मी जो अपने बारे में कुछ कुछ भी करना चाहते हैं मेंटल स्पेकुलेटर होते हैं उनके जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसकी तुलना की गई है। अगर हम मेंटल स्पेकुलेशन करके कुछ करना चाहेंगे तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। यानी अगर बताया जा रहा है कि उदाहरण के लिए अगर पश्चिम दिशा में जाएंगे तो आपको यक्ष मारेगा, यानी हम लोग मनोधर्म से कुछ कार्य करना चाहेंगे तो हम चिंता चिंता से ग्रस्त होकर हमारे जाएंगे। और दक्षिण दिशा में जो जाते हैं जहरीला विश्व है वैदिक कर्म कांड का सवाल है, वैदिक कर्म कांड को अगर हम लोग पालन करने के लिए फंसते जाते हैं, साइकिल बन जाता है, कर्म कांड का पालन करते 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 इतना फंस जाता है, उसमें फिर भी गलतियां होती हैं, उसमें गलतियां नहीं होती कि उसमें रिएक्शन हमको लेना पड़ता है। और उत्तर की तरह बताया गया जो छोटे सांप को बड़ा सांप खा रहा है वो प्रकार में बड़ा सांप जो है भगवान से एकाकार होने की जो भावना है निर्विशेषवादों का, और छोटा सांप कौन है वो जो व्यक्ति है जो ये कार्य करना चाह रहा है ना। तो बड़ा सांप छोटे सांप को खा रहा था एकाकार होने की जो भावना है उस व्यक्ति को निकल जा रहा है जो टेलिफिक का अपना उद्धार करने के लिए एकाकार होना चाह रहा है। तो बता रहे हैं छोड़कर अनुकूल दिशा की ओर जाना है और वो भविष्यवाणी को बताने वाला व्यक्ति कौन है, श्री प्रभुपाद है जो बता रहे हैं कि पूर्व दिशा की ओर यानी जो स्कॉन की ओर या जो इस धरती के क्षेत्र में हमें प्रवेश करना है वास्तविक धन है कृष्ण प्रेम धन है, किसकी ओर जाना है। तो जब हम इतना छुपा हुआ धन जो हमें हमारे गुरुजन द्वारा बताया जा रहा है इसको अगर नहीं मानते हैं इसकी इसका पालन नहीं करते हैं तो हम लोग वास्तव में क्यों पहुंचाएंगे। तो यही बताया जा रहा है किस प्रकार कि गुरु के आगे का पालन करना चाहिए। ठीक है, इसलिए सरेंडर सबसे ज्यादा यहां पर महत्वपूर्ण اشارہ بتایا جائے جیسے کہ ڈوبیوں کے سر کے دکھایا ہے. اور بولتے ہیں کہ کس طرح جیسے ہم سرٹر کرتے ہیں تو بولتے ہیں پورا جو بولتے ہیں جیسے کسی طریقے کا وواہ ہوتا ہے, وواہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے پتی کے گھر کے جتنے رشتے دار ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں سر, ان کے اپنے آپ رشتے دار ہو جاتے ہیں, الگ سے رشتہ نہیں بنانا ہوتا, صرف پتی سے میرج کرنا ہوتا ہے. اور جیسے پتی سے میرج ہوتا ہے تو اس کے پتی کے جتنے بھی سگے سمبندی ہیں ان کی بھی سگے سمبندی ہوتے ہیں. تو جیسے ہی ہم بھگوان کو سرٹر کرتے ہیں, جیسے بھگوان سے ہم پتن جڑتا ہے یا گرو سے برف پتن جڑتا ہے تو آٹومیٹکلی ان کے پریوار ہرے کرشن کا سوال کرنا سمجھا ہے. تو ایک طرح سے اپنے آپ اتنے سارے بینیفٹ ملتے ہیں, کرشن کے شرن میں جانے تو آٹومیٹکلی سارا کچھ ہو جاتا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ لیکن یہ سرٹر بڑھے گا کیسے, ہم چاہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا سرٹر بڑھے گا نا, ہم سبھی چاہتے ہیں سرٹر بڑھا نہیں پاتے. تو اس کا بھی طریقہ ہے, جیسے بنگال میں جو شیر ہوتے ہیں وہ شیر کو کیا کرتے پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو پنجرے بند کر دیتے اور کئی دنوں تک کھانا نہیں دیتے, کئی دنوں کے جب کھانا نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتا ہے, اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ کھڑا نہیں سکتا اپنے انسان کو. سب کیا کرتے ہیں پنجرے کھولتے ہیں اور اندر جاتا ہے, وہ جو پنجرا ہوتا ہے نا اندر جاتا ہے بڑی ہنٹر لے کے, وہ ہنٹر لے کے خوب مارتا ہے بہت مارتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے تھوڑا سا کھانا دے دیتا, پھر تھوڑی دیر بعد کیا کرتا ہے پھر ہنٹر سے مارتا ہے پھر کھانا دے دیتا. اس پرکار روز کرتا ہے دروازہ کھولتا ہے وہ سے تاکہ اتر جاتا ہے کہ پہلے مارے گا, کھانا تو دیتا ہے اچھا ویسے یہ لوگ مارتا ہے. تو پھر وہ پھر ہنٹر سے مارتا دیتا وہ رہتے ہوتا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے بھالو ناکا کیا کیا ٹرن بجانا ہے, جب بھالو کو پکڑا جاتا ہے اس کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں نیچے تھانے اور ایک گرم توے کے اوپر اس کو رکھ دیا جاتا ہے, بہت گرم نہیں توا آٹو ہوتا ہے اس پر رکھ لگ دیا جاتا ہے, تو بھالو کھڑا ہوتا اور دوسرا چھوڑانا ہے ٹریننگ دے دی اس کو نچانے کی, نیچے سے کیا کرتے ہیں نیچے سے آگ لگانا شروع کرتے ہیں اور ڈرم بجانا اس طرح ہے اور دھیرے دھیرے فلیم بڑھتا جاتا ہے, ٹیمپریچر جب توا کا بڑھتا تو پیر رکھتا ہے نا, تو اس کو کیا لگتا ہے پتا کہ ڈرم بجنے سے توا گرم ہوتا ہے اس کو یہ لگتا ہے, تو اس کے دماغ میں بیٹھا بھی جاتا ہے کہ ڈرم بجنے سے کیا ہوتا ہے توا گرم ہوتا ہے. تو جب جب ڈرم بجتا ہے سرکس میں آدھو سوچ کا ٹریننگ گرم ہونے والی ہے. تو دیکھیے ہمارا جو من ہے وہ بڑا بہت چلا ہے, جو چلا اور تیز ہے چنچل ابھی منا کشن پرماتی بھگوت بنا کسیا مجھے بنے وائی کرم اتنا خبردار شکتیشالی کنٹرول ہونا ہمارے وقت نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمارے گرو جنم کا روپا جیسے مہان آچاریہ کی باتیں سننے پڑے گی, اور کیا کرنا پڑے گا ٹریننگ لینے کے لیے جو نیچے کو ٹریننگ بنانا پڑے گا اور ان سے ٹریننگ لینی پڑے گی. ٹریننگ کے لیے پہلا چیز کیا تھا شہر میں کیا کیا گیا تھا, بھوک بھوکا رکھا گیا تھا, اس لیے ہم سب لوگ کو اپواس کرنا چاہیے, جیسے پروشوتم ماس ہے یا کلسی کا بھائی مطلب تو ورت کیے ہوئے ہیں, ابھی پرچنڈ آدمی جب رہے ہوئے پیٹ میں ہے نا پرساد رہے پرساد گرہن کرنے کے, تو جب ہم لوگ ورت رکھتے ہیں تو ورت رکھنے سے ایک بھکت بتایا کہ ایکادشی کی تھی رکھتے ہیں ورت, ایک طریقہ انہوں نے بتایا سوائے پانچ گیارہ دن یا پانچ کرم دن ہے اور گیارہویں دن کے لیے جو من ہے اس میں گیارہویں دن کرتے ہیں من کو کنٹرول کرنے کے لیے, جب پانچوں کرمندریاں پانچوں گیارہ اندریوں کا بھوجن دینا بند ہو جاتا ہے ادا اسی جگہ پر رہتے ہیں تو سارے جینا مر جانے پر جینا بندوں کو پکڑ لیا جاتا ہے, من کو پکڑ لیا اس کے ساتھ کیا کر کے بیٹھو اور بیٹھے صرف یہ نہیں کیا جاتا ہے کہ بھوجن نہیں کرتے ہیں کم کھاتے کم تو یہ نہیں کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں ساتھ میں ایڈیشنل چیزیں تو کمزور ہو تمہاری پٹائی پڑے گی, کیا پٹائی پڑے من کو بولیں گے پہلے سولہ بارہ کرتے تھے نا آج تک کرو پہلے ایک گھنٹہ پڑھتے تھے دو گھنٹہ پڑھو تین گھنٹہ پڑھو تو زبردست اس کو فون کیا جاتا ہے, تو ورت رکھنے سے ہمارا من جو ہے سب تو گھوم کی استھتی پر پہنچ جاتا ہے. اس لیے آپ نے محسوس کیا ہوگا ہم صبح جو جب کرتے ہیں تو بڑا آسانی سے جب ہوتا ہے, جیسے ہم بھوجن کر لیتے ہیں تو دن میں جب کرنا بہت کٹھن ہو جاتا ہے, جیسے ان شریر میں جاتا ہے بھوک کچھ کر لیتے ہیں کھا لیتے ہیں تو یہ کٹھن ہو جاتا ہے ہمارا دن, تو ویسے ہی تپسیا کرنا ضروری ہے, جیسے کہ شدھ ہونے کے لیے بھوکیاں تپسیا کر رہی تھی ہے نا, کرشن کو پانے کے لیے تپسیا کرنا ضروری ہے. آپ کو پتا ہے نو پین نو گین آپ نے کہا سنا ہے, یہ جو سنا ہے ہندی روپانتر کیا ہے, بنا کشن کے کرشن نہیں ملتے کہاوت, कृष्ण को पाने के लिए कष्ट को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि प्रभुपाद ने कहा है कि नाचो भाव भाव और क्या चले जाओ भगवत धाम चले जाओ, बीच में वो घुसाते हैं ऑस्टेरिटी पर बचते हैं, चैंटिंग है बैठे एक जगह दो घंटे करना, ये वास्तव में है हमारे लिए। तो तपस्या करना जरूरी है, तपस्या जब करेंगे तब जाकर हमें कुछ प्राप्त होगा। और तपस्या में बहुत ज्यादा जरूरी क्या एक्टिविटी नियम एक्टिविटी होना चाहिए, ताकि हम तपस्या कर रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं चारों दिशा पालन कर रहे हैं, पोर्टफोलियो चेक करने के लिए बहुत सब लोग आपके पास आएंगे। इसके लिए तेज होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, भक्ति में ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर ईमानदार नहीं है तो भक्ति नहीं कर सकते। जैसे कि सावित्री की दशा आती है, वो बहुत ज्यादा चेष्ट वाइफ थी, उनके पति का देहांत हो गया, पति के आत्मा को लेकर यमराज जी जा रहे थे, किसी भी से चले गए हम लोग, तो यमराज के पति के क्यों आ रहे पीछे बताओ, बोलते हुए सभी जा रहे हैं सभी जाने आए नहीं जाऊंगी, बोलते थे नहीं फिर तुम आ सकती बजट ठीक है बच्चे वरदान दो तुम चले जाओगे वापस, बोले हाँ ठीक है वरदान मांग दो, बोलते ठीक है मुझे 100 रुपये दे दीजिए, बोलते सरदार दो, बोलते अब जाओ वरदान दे दिया मुझे 100 रुपये पति बता दो, पति से जाओगे ना पति वापस करो, तो उसको पति वापस करना पड़ता है 100 पुत्रों को जन्म देने के 100 पुत्र भी नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार देखा जाए कि आधार क्षेत्र है तो वृद्धि को भी डाल सकते हैं, हम एकदम आने वाले कष्टों को भी डाल सकते हैं। तो जैसे गोपियां क्षेत्र थी है ना, गोपियां बहुत ज्यादा पति बताती है, पति मान लिया है उसी के लिए तपस्या कर रही है, उनकी खुशी के लिए सब कुछ तैयार करती है लज्जा बचा, इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं शेर बुलवा लेते हैं है ना। और जैसे कि भौतिक प्रकार की दृष्टि से ये बहुत अच्छा ही व्रत नहीं माना जाता है, तो अपने बच्चों को तैयार करते हैं नृत्य करते सड़कों पर आनंद हो है ना, किसके लिए दृष्टि की प्रसन्नता के लिए। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि नहीं सब लोग देखेंगे शेर बुलवा ठीक नहीं है सरेंडर नहीं करते जब तो हमारे लिए दृष्टि कैसे मिलता है, तो ये इसलिए अगर हमें इस शिक्षा से देख के चलना है कि किस प्रकार गोपियों के द्वारा शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान को सरेंडर करना है भगवान की खुशी की। कृष्ण को प्रश्न है तो मुझे बताएंगे।
तो गोविंद ने समर्पण की बहुत अच्छी चर्चा की है, तो आज जो ये प्रसन्न कर रहा है उसमें हम देखते हैं कि गोदाम लीला में वो अंतर है, कृष्ण की लीला से गोदाम लीला में अंतर है कि भगवान कृष्ण जैसे वस्त्र धारण करते हैं या राजलीला करते हैं तो चेतन महापुरुष की लीला में ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक ही केवल कन्या है जिसके साथ चेतन महापुरुष ये व्यवहार कर रहे हैं और लक्ष्मी प्रिया है केवल उनके साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और ये जो व्यवहार होता वास्तव में विवाहता है वास्तव में वो विवाहित होंगे, तो यहाँ पर जो है कोई वस्त्र धारण की लीला नहीं है और राज लीला नहीं है, भगवान कृष्ण ने गोपियों का निर्वाह नहीं किया लेकिन राम समय की वस्त्र धारण कर ली, तो ये कृष्ण की अवतार नहीं है सब लीलाएं होती हैं दुष्यता चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है उसमें ये लीला नहीं है, केवल एक ही कन्या के साथ भगवान जो है ये व्यवहार कर रहे हैं, और उन्होंने ये श्लोक बोला हालांकि गोपियों का श्लोक बोला लेकिन वो वास्तव में केवल एक ही कन्या के लिए भगवान बोल रहे हैं, बल्कि इससे पहले और भी चली कई कन्याएं आएंगी, तो चेतन कृतम ने कहा कि वो निमाई को भाई मानती है तो निमाई ने उनको भाई मानती है, वो कहते तुमको जो है पति अच्छा मिलेगा या अच्छा नहीं मिलेगा तो वो खुद आधार पर बोल रहे हैं पति खिलाओ, लेकिन मतलब कृष्ण स्वयं चेतन महापुरुषों की पति थी न तो बनने की बात सोच रहे हैं न वो सोच रहे हैं कि चेतन महापुरुष बने वो भाई का ही संबंध है, तो इस तरह से चेतन लीला में और कृष्ण लीला में इस प्रकार का अंतर भी देखा जाता है, और एक संप्रदाय गोदान नागरी संप्रदाय है उसको जो है मानन करेंगे क्योंकि वे गोदान नागरी जो बातें करते हैं वे लोग चेतन महाप्रभु उसी प्रकार से आरोप करते हैं चेतन महाप्रभु ऊपर भी ऐसी लीला जो कृष्ण है लीला गोपियों के साथ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है महाप्रभु लक्ष्मी प्रिया के साथ जब बोल रहे हैं बहुत गंभीरता में बोल रहे हैं बहुत गंभीर भाव से बोल रहे हैं, और वो जो गंभीर भाव है वो उनका सखिया भाव है, जैसे कि विवाहित स्त्री होती है और फिर वो विवाह उनका होगा। यहाँ पर एक नियंत्रण है जो तुमने देखना, जो तुमने देखा, ठीक है।